कराटे क्लास चल रहा था, दो चार 1967 रविवार को पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। कि तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा विपरीत कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म जरूर नाश होगा। किसको याद करते रहेंगे? हैं? बाप को याद करते, बाबा को नहीं। मुरली में तो बाप लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। क्या? प्रकष्ट रूपेण सिद्धि भई, जिस बात की चारों ओर से प्रूफ प्रमाण देकर जो बात सिद्ध की गई, ऐसी प्रसिद्ध हुई संसार में, उस बात के लिए कहा कि बाप ने कहा। बाबा शब्द नहीं आया, बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मिल को। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाप के बाप को। लेकिन यहाँ कहा किसने? बाप ने कहा। क्या? अगर तुम मेरे को याद करती रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। कहा किसने? अरे हिंदी नहीं जानते इसलिए जल्दी नहीं बोलते। अरे मुरली ने क्या कहा? किसने कहा? बाप ने कहा। बाप हद के तो ढेर के ढेर, उनकी तो बात छोड़ो, 84 जन्म में 84 बार, हर एक के अलग अलग। जो ग्रेट फादर्स हैं वो भी धर्म पिता हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर विस्म भस्म हो जाएंगे। यहाँ कौन से बाप ने कहा? वेद के कितने बाप हैं? हैं? दो बाप हैं। तो दो बाप जो बेहद के हैं, उनमें से कौन से बाप ने कहा? बाप माने कौन सी आत्मा? साकार बाप की आत्मा ने कहा कि मेरे को याद करते रहेंगे तो गारंटी करता हूँ तुम्हारे पाप कर्म जरूर भस्म होंगे। निराकार बाप ने नहीं कहा? क्या निराकारी बाप को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे? नहीं, यहाँ सवाल ये है, ये नहीं, सवाल ये है कौन से बाप की आत्मा ने कहा। अरे हर आत्मा के बोलने में, हर आत्मा के संकल्पों में, हर आत्मा की दृष्टि वृत्ति में, कर्मों में फर्क होता है या नहीं होता है? हैं? तो यहाँ कौन सी आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो भस्म हो जाएंगे तुम्हारे पाप पर? साकार ने कहा, निराकार नहीं कह सकता। साकार बाप हैं? साकार बाप निराकार बाप समान बनने के बाद कहेगा, अभी नहीं कह रहा है। हैं? पास्ट की बात बोल रहा है। अगर साकार बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो अगर कहता है तो उसका कहना गलत है या सही है? है? सही है। क्यों? अभी संपन्न बना है, संपन्न स्टेज होने वाला है, तो जब हो जाएगा तब याद करेंगे तो पाप कर्म सब भस्म होंगे, ऐसे ही है ना, है खुद ही अधूरा है तो पाप कर्म हमारे भस्म करेगा। अभी संपन्न स्टेज है, अभी नहीं है, लेकिन बोल तो रहा है अभी 67 में और पढ़ी जा रही है, चलो क्योंकि वेद वाणी है, हर काल में सच्ची साबित होती है। तो साकार बाप ने जो कहा, जिस साकार बाप में निराकार प्रवेश है और वो निराकार बाप प्रवेश करके ही दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से दो बोलता है, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा को भी प्रजापिता का टाइटल मिला है या नहीं मिला है, हैं? तो जब प्रिंसिपल स्कूल से कॉलेज से बाहर होता है, नदारद होता है, छुट्टी पर होता है, तो वाइस प्रिंसिपल कार्यवाहक होता है ना, तो कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप ने ही बोला ना, हैं? लेकिन किसकी तरफ से बोला कि मेरे को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ से बोला कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म जरूर भस्म होंगे। तो भविष्य के लिए जब वो पाप कर्म भस्म करेगा, बाप समान बनेगा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगा, तब ही पाप भस्म होंगे ना, या अभी भस्म होंगे? याद करते करते भस्म होंगे, लेकिन जो बाप कह रहा है वो साकारी बाप कह रहा है ना, यही आपने कहा ना, तो साकारी बाप अगर ये कह रहा है, साकारी बाप की आत्मा कह रही है कि मेरे को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे, यही बात हुई ना, हैं? निराकार को याद करेंगे, सिर्फ निराकार बाप की आत्मा को याद करेंगे तो मेरे तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे,
आकार निराकार दोनों को।
हाँ, क्योंकि हम साकारी है ना, और निराकार आत्मा भी हमारे अंदर है, तो जब दोनों का मेल होता है तभी तो पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। पाप कर्म कब भस्म होंगे? सिर्फ निराकार आत्मा के पाप भस्म होंगे, या सिर्फ साकार आत्मा के पाप भस्म होंगे, या सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के पाप भस्म होंगे? साकार और निराकार दोनों कंबाइंड होंगी, निराकार आत्मा और साकार शरीर धारी दोनों कंबाइंड होंगे तो ही तो पुरुषार्थ कर सकेंगे। सिर्फ बिंदु आत्मा तो पुरुषार्थ नहीं कर सकती, सूक्ष्म शरीरधारी भी जब तक शरीर में प्रवेश न करे कोई एक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो ठीक है, पुरुषार्थ करने वाला बाप को याद करेगा तो उसके पाप भस्म होंगे, लेकिन कौन से बाप को याद करे, सिर्फ निराकारी को या साकारी को? लेकिन कहे कौन रहा है यहाँ? यहाँ मुरली में शब्द तो बाप आया हुआ है, और बाप भी हद के दो हैं। हद के बापों को तो याद करने से पाप भस्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि हद के बाप तो 84 जन्मों में जितने भी हुए सब उतरती कला में गए, सारी दुनिया ही नीचे गई, तो उनकी तो बात ही नहीं रही। धर्म पिताओं की, वो भी नीचे गए, खुद को भी नीचे ले गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले गए, तो उनकी भी बात नहीं हो सकती, भले वो कितने भी ग्रेट फादर्स रहे हों दुनिया में। लेकिन जो बाप अभी बोल रहा है मुरली में, चलो बोल नहीं रहा है, सन 67 में बोला दादा लेखराज ब्रह्मा, कीर्तन में जिस ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला, मान लो वो टाइटल धारी ही बोल रहा है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, टाइटल धारी ही बोल रहा है मान लो, तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में उस टाइटल धारी बाप से ज्यादा पुरुषार्थी कोई है? था 67 में। अरे बोलो धड़ाधड़ बोला करो, नहीं तो मजा नहीं आता है, है? कोई था नहीं था? अरे भाई संसार रूपी जंगल में ये तीन शेर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, टाइम टू टाइम दहाड़ मारते हैं तो उनकी यादगार तीन शेर दिखाई जाती है। आजकल नोटों में भी, स्टाम्प पेपर में भी, वैसे भी शेर की लाट बनी हुई है, अशोक की लाट, तो वो यादगार तो है ना, है? ये भारत की सर्वोच्च चीज है, तीन मूर्तियों के रूप में दिखाई गई, उसमें भी नाम देते हैं त्रिमूर्ति। तो जो त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है, एक बाप नहीं है, अरे तीन मूर्तियां हैं तो तीन बाप हैं कि एक बाप है? हाँ? कितने बाप है? एक ही बाप है, है त्रिमूर्ति, लेकिन उसके तीन मूर्तियां हैं, मूर्ति माने मूर्त जिसकी हो, उसकी तीन मूर्तियां हैं, तो तीन मूर्ति वाला वो त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति बाप कहता है, चलो कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कहता है, जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो कार्यवाहक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो उसकी मान्यता नहीं है क्या? है ना? तो ऐसे ही कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 2467 को बोला कि बाप ने कहा है अगर तुम मेरे को याद करते हो तो मैं ये गारंटी करता हूँ तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। तो वो बाप अगर कहता है, शिव बाप की बात तो यहाँ नहीं आई, तो क्या हमारे पाप कर्म विनाश होंगे या नहीं होंगे? अरे
हाँ?
निराकार शिव बाप बोल रहे हैं, लेकिन उस बाप के ऊपर ये बात निराकार के ऊपर लागू होती है? वो निराकार बाप की आत्मा जो बोल रही है, मेरे को याद करती रहेंगे तो, और तेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है बिंदी का, वो तो कभी बदलता नहीं, तो बिंदी शिव आत्मा को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे?
बिंदी को तो नहीं होंगे, लेकिन वो जो भी,
लेकिन लेकिन नहीं, जो बाप बोल रहा है उसकी बात करो।
मेरे को याद करने से माना भविष्य में आने वाला साकार,
यहाँ भविष्य की तो बात ही नहीं, मेरे को याद करते रहेंगे अब से लेकर के भविष्य अंत तक, जब तक तुम रहे मेरे को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे, गारंटी है।
तो
संपन्न होने के बाद याद करें?
नहीं, अभी से याद करेंगे पर संपन्न होने के बाद हमारा पाप कट जाएंगे।
नहीं, संपन्न होने के बाद के स्वरूप को याद करें, मेरे जो कह रहा है उसको याद न करें,
उसको ही याद करें। सृष्टि में शिव को जो शिवलिंग,
तो ये तो पक्का हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं, मान लो प्रजापिता ब्रह्मा ही कार्यवाहक है और वो आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप जरूर भस्म होंगे, गारंटी कहता हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, सुनने वालों को ये तो पक्का है कि हाँ यही 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाला है, पक्का है ना? तो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म हमारे नहीं होंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे हम नहीं बनेंगे। तो झूठ बोला है या सही बोला है?
ये बताएं वो साकार या आकार निराकार को याद नहीं करना है, उससे कर्म बस नहीं होंगे। लेकिन अभी यहाँ बोलने वाला तो निराकार है, वो बोल रहे की सृष्टि में
तो सही बोलता है निराकार।
निराकार
सही बोलता है क्या? मेरे को आत्मा मेरे कहेगी तो एक के लिए कहेगी कि अनेक के लिए कहेगी? फिर हमने तो नहीं बोला, हमको याद करते रहेंगे, हम माने दो कम से कम। यहाँ तो एक आत्मा ने बोला, तो अगर हम निराकार की तरफ ये लगाएंगे बात कि निराकार शिव ने बोली, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, तो उसको याद करते रहेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे? या जिन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स ने निराकार को याद किया उनके पाप भस्म हुए क्या?
बोला तो शुभ बाप ने, लेकिन वो इस सृष्टि में जैसे संपन्न रूप शिव शंकर का सब प्रसिद्ध है, उस रूप में उनको याद करना है।
बैठने वाले सामने कौन बैठे थे? उसके साकार के सामने जो बैठने वाले सुन रहे थे, जिस स्थिति में सुन रहे थे, उन्होंने अपना सुप्रीम बाप उसे मान लिया या नहीं मान लिया? साकार में भी मान लिया ना। तो जिसको मान लिया उसकी सुप्रीमेसी को जब स्वीकार कर लिया तो उसे याद करेंगे, तो जिसको याद करेंगे वैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो गलत क्या कह दिया इसने?
वैसे बनेंगे लेकिन विकर्म तो विनाश नहीं
होगा। माना श्री कृष्ण के, दादा लेखराज के, प्रजापिता ब्रह्मा के, टाइटल धारी के विकर्म विनाश नहीं होते?
ये भी संपन्न नहीं
होंगे, भविष्य तक की बात ये कहीं बताई, याद करते रहेंगे तो। अरे जो भी सन्मुख बैठे थे उनसे बोला कि गारंटी करता हूँ तुम्हारे सन्मुख बैठने वालों के विकर्म विनाश होंगे, भविष्य तक की बात बताई ना। तो भविष्य तक जिन जो आत्माएं उनके सन्मुख बैठी हुई थी वो अंत तक याद करती रहेंगी उसी रूप को, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? होंगे ना। हाँ तो गलत तो नहीं कहा। निराकार को क्यों करनी है? वो साकार भी था, प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा साकार भी था, प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर निराकार आत्मा भी है कृष्ण की। अकेला साकार भी नहीं है, अकेला निराकार भी नहीं है। अरे
सारी दुनिया एक को याद करती
है। सारी दुनिया एक कहाँ को याद करती है? सारी दुनिया तो निराकार को पहचान भी नहीं पाती है।
साकार को याद करती है,
साकार को भी याद नहीं कर। साकार को याद करने से पाप कर्म भस्म होते ही नहीं,
संपन्न स्टेज बनते
हैं। यहाँ सवाल ये है, जो बाप बोल रहा है कि मेरे को याद करेंगे, तो वो कौन सा बाप है जो बोल रहा है? वो आत्मा कौन है जो बोल रही है कि मेरे को याद करेंगे तो गारंटी करता हूँ पाप पर जरूर नाश होंगे तुम्हारे।
ब्रह्मा तो बाप है नहीं,
तो नहीं, लेकिन कार्य है कि नहीं? वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उस कुर्सी को आप नकार देंगे?
बाप तो बाप है ना, वो तो टेम्पल ही है।
बाप मर जाता है तो अम्मा बाप का काम करती है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के लिए,
लेकिन बाप नहीं बनती।
अब वो बच्चे जिसको याद करेंगे उसके समान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसके पाप भस्म नहीं हुए समान होने से?
अम्मा तक बनी ना जो,
तो अम्मा, अम्मा कृष्ण वाली आत्मा जो अम्मा है उसके पाप भस्म नहीं होते क्या? नहीं होते है? और उसके साथ जो जन्म लेती है जिसे हम मम्मा कहते हैं, ओम राधे, तो साथ ही साथ दोनों जन्म लेते हैं ना, दोनों के संस्कार समान बनते हैं या नहीं? लेकिन नहीं, हमें जो पूछा उसका ही जवाब दो पहले।
पूरा 84 जन्म नहीं हुआ ना, उनका तो संपन्न हुआ लेकिन
पूरा 84 जन्म नहीं होते उनके दोनों के,
कम रहे
हैं पूरा 84 जन्म नहीं होते। ये किसने कहा कि कृष्ण वाली आत्मा की 84 जन्म नहीं होते हैं? पूरा जन्म की बात, पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं तो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, तो 16 कला संपूर्ण जो बनेगा उसके पाप भस्म नहीं हुए फिर सूक्ष्म शरीर भी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है या नहीं करता है? तो फिर उसका जो हिस्सा उसे मिलता है नहीं मिलता है? फिर अरे सवाल ये है, हम डकैत को याद करेंगे तो डकैत बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसी आधार पर 16 कला संपूर्ण आत्मा हमने पहचान ली कि ये बनेगी, तो 16 कला संपूर्ण आत्मा को हम याद करेंगे तो हम यहाँ तो ये भी नहीं बात है, यहाँ तो बात है हमारे पाप कर्म भस्म होंगे या नहीं होंगे? पाप कर्म भस्म होंगे तो हम 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बनेंगे, पाप रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे? तो यही तो बात है, जो आत्मा के द्वारा मुख से ये बात बोली जा रही है मेरे को याद करेंगे, तो ये किसने कहा मेरे को याद करेंगे? कौन सी आत्मा ने कहा? शिवात्मा ने कहा वो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, वो कह सकती है, वो कह सकती है कि मेरे को अकेले को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे, या उसको जिन धर्म पिताओं ने याद किया उनके पाप भस्म हो गए? हो गए? ये तो बात गलत है कि निराकार को याद जिन्होंने किया उनके पाप भस्म हो गए। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, जो कृष्ण वाली आत्मा को हमने पक्का समझ लिया कि ये 16 कला संपूर्ण बननी ही बननी है और अंत तक हम उसे अगर याद करते रहेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे, होंगे? ये तो बात रही वहां तक की। अब तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब ये वाक्य जो मेरे शब्द बोला है वो किसके लिए लागू होगा? अब शिव प्रजापिता ब्रह्मा जो ओरिजिनल था वो तो इसी सृष्टि में अंत तक रहता है ना, सूक्ष्म शरीरधारी तो नहीं बनता, तो वो आत्मा के द्वारा ये वाक्य लागू होता है या नहीं? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं वेद वाणी जो है उसकी ऋचाएं कोई भी युग आ जाए तो सच्ची ही साबित होंगी, तो ये हम जानते हैं ये ब्रह्मा वाक्य है, ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो ये वाक्य मेरे शब्द अब किसके लिए लागू होता है? प्रजापिता जो ओरिजिनल था यज्ञ के आदि में उसके लिए लागू होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो ही आत्मा कहती है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, हो रहे हो जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोला, एक एक शब्द एक एक अक्षर जो वेदवाणी का है वो पत्थर की लकीर है। अरे भगवान बोलेगा तो क्या गलत बात बोल सकता है? तो यहाँ होंगे विनाश तुम्हारा विकर्म का, विकर्म होगा विनाश पाप कर्मों का, तो भविष्य के लिए बोला या अभी के लिए बोला? तो किसको याद करेंगे? हाँ प्रजापिता ब्रह्मा चाहे ओरिजिनल हो चाहे टाइटलधारी हो, टाइटलधारी होगा तो टाइटलधारी के सामने बैठे हुए थे चंद्रवंशी, क्या अगर बैठे भी थे कोई सूर्यवंशी बनने वाले तो आगे चल करके वो कन्वर्ट होने वाले हैं, चंद्रवंशी बने रहेंगे क्या? नहीं, वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बने रहेंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो उस समय थे भी नहीं वास्तव में, क्या थे उस समय? चंद्रमा को ही सर्वोपरि समझते थे ना, तो वहीं तक थे। बाद में वो आत्माएं जो हैं वो सूर्य को फॉलो करने लगे, जो गीता में बोला है मैं सूर्य को आकर के देता हूँ ये सारा ज्ञान, वो है आसमान का सूर्य और तुम हो धरती के चांद सितारे। तो धरती का कोई भी कुछ सूर्य होगा या नहीं होगा? तब तो सूर्यवंश पैदा होगा, सूर्य से ही सूर्यवंश पैदा होता है, चंद्रमा से चंद्रवंश पैदा होगा। तो जो सूर्य है इस साकार सृष्टि का, जो हर धर्म की मनुष्य आत्माओं को रोशनी देने के निमित्त बनता है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर निमित्त जरूर बनता है कभी न कभी, चाहे नास्तिक ही क्यों न हो। तो वो कहता है इस समय या नहीं कहता है, तुम मेरे को याद करें। तो ये तुम किसको लागू होता है? सूर्यवंशियों को, चंद्रवंशियों को या दूसरे इस्लामवादी वंशियों को? सूर्यवंशियों को लागू होता है। तो सूर्यवंशी बच्चे ही 76 के बाद एडवांस पार्टी कहे जाते हैं। उन बच्चों से बोला तुम मेरे को याद करते रहेंगे, रहेंगे का मतलब कहाँ तक? अंत तक याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ क्या कि तुम्हारा पाप कर्म इसी दुनिया में यहीं भस्म हो जाएगा, दुनिया के विनाश होने से पहले ही भस्म हो जाएगा। और जिनके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो फिर वो सजा खाएंगे हैं? नहीं है, माने 8 की लिस्ट तक में भी आ सकते हैं। कौन हैं? याद करते रहेंगे वो, किसको याद करते रहेंगे हैं? हाँ, अंत तक का मतलब यह है कि वो प्रजापिता भी शिव समान बन जाएगा। अभी भी याद करते रहे, अभी नहीं बना, अभी भी अगर याद करते रहे तो पुरुषार्थ ऊंचा ही जाएगा या नीचा जाएगा? क्यों? अभी तो संपन्न नहीं बना है। हाँ, अभ्यास करता है अभी तो संपन्न ना बना, तो अभी कैसे कोई ऊंचा चला जाएगा है? हाँ, हमें पता तो चल गया, हमें वेदवाणी मुरली के द्वारा ये पक्का पता लग गया, हम तो पक्का निश्चय बैठे हैं ना, निश्चय बुद्धि है ना बाप की वाणी पर। क्या कि अमुक आत्मा जो है वो संसार की संपन्न आत्मा बनने वाली है, हीरो पार्टनर। तो ऐसे हीरो को हम याद करेंगे जिसका पुरुषार्थ हीरो की तरह है, तो हम क्या बनेंगे? हीरो जैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो यही तो यहाँ बोला, मेरे को याद करते रहेंगे तो गारंटी करता रहा, मेरे को छोड़ करके मेरे सहयोगी को याद करते रहेंगे क्या? जो मेरा संगम युग में सर्वोपरि जीवन साथी है, चलो उसको याद करते रहेंगे तो है तो नहीं बने, क्योंकि वर्तमान समय में जो जीवन साथी है वो तो चंद्रवंशी का पुरुषार्थ कर रहा है, वो सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है या रानी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है? वो तो आधीन बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो हम आधीन ही बनेंगे ना फिर। है तो मालूम है कि आगे चल करके वो इतना आगे बढ़ जाएगा प्योरिटी की पावर के आधार पर कि सबको क्रॉस कर जाएगा। तो भी वर्तमान समय अगर उस समय याद करेंगे उसको, तो हमारे अंदर आधीनता के संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए बोला अपने दिल में हरेक देखे क्या कि हमारा उस वाक्य के साथ कितना योग लगता है। योग तो तब लगेगा जब निश्चय बुद्धि होंगे। क्या कि वो बाप आकर के किसका परिचय दे रहा है, इस मनुष्य शक्ति की आत्माओं के बीच, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़ा भाई जो दुनिया में बाप समान कहा जाता है उसका परिचय दे रहा है। उस परिचय को हम जानेंगे पक्का पक्का, निश्चय बुद्धि बनेंगे तब तो बनेंगे, तब तो हमारा योग लगेगा बाप के साथ। तो क्योंकि पाप हमारे कटते जाएंगे, क्या किसको याद करने से, जो वर्तमान में भी साकार भी है और क्या है निराकार भी है। भले आत्मा संपूर्ण निराकारी स्टेज में नहीं बैठी है तो भी हमें अभी पता लग गया कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, साकार में निराकार को याद करने से ही अपनी अपनी संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे। नहीं तो संपन्न धाम में, शांति धाम में, सोल वर्ल्ड में जा ही नहीं सकती। तो तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा या घट जाएगा? क्यों बढ़ता जाएगा, वो तो असंपन्न है, संपूर्ण है ही नहीं, अधूरा है।
वो भी उसका भी बढ़ रहा है
शायद, मैंने हीरो पार्टधारी तो स्वीकार कर लिया लेकिन शायद बढ़ रहा है, हो सकता है, हो सकता है न भी बढ़ रहा हो,
शायद नहीं बढ़ रहा, शायद नहीं बढ़ रहा है।
हाँ, ये निश्चित है कि जन्म बाई जन्म उस आत्मा ने जो भी पार्ट बजाया है, जहाँ भी पार्ट बजाया है, जिस क्षेत्र में पार्ट बजाया है, चाहे सेना में पार्ट बजाया, चाहे साहित्य में पार्ट बजाया, चाहे बिजनेस में पार्ट बजाया, जहाँ भी पार्ट बजाया, हीरो बनकर ही पार्ट बजाया या नीचा पार्ट बजाया, तो उस स्वरूप को हम याद करेंगे। वर्तमान में भी शूटिंग कर रहा है कि नहीं, तो जो भी पुरुषार्थी है इस दुनिया में, उन पुरुषार्थियों के बीच वो तन से, मन से, धन से, समय संपत्ति की सारी ताकत लगाकर दुनिया के मुकाबले ज्यादा ही ऊंचा पुरुषार्थ कर रहा है या नीचा पुरुषार्थ कर रहा है, तो तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा। अगर पाप नहीं कटते जाएंगे तो योग लगेगा ही नहीं। क्या है इसका मतलब? ये हुआ कि जो बोल रहा है आत्मा कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप क्षतिया कटते जाएंगे। अगर कोई उसे याद कर रहा है, कह रहे कहे कि हम उसी को ही याद करते हैं, हम तो उसके पास ही रहते हैं, हम तो उसके घर में ही रहते हैं, सदा कंधे पर चढ़े रहते हैं, हम तो पूरे ही सरेंडर हैं, लेकिन योग नहीं लगता है। तो किस क्या साबित हुआ, पाप कट रहे हैं या झूठ बोल रहा है? हैं? पाप नहीं कटते हैं। अगर योग बढ़ता जाता है, क्या जैसे उसकी याद की स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे हमारी भी याद की स्टेज बढ़े, दिन प्रतिदिन हमारा याद सहज होती जाए, अनुभव करें। क्या बताया योगी की निशानी तो बता दी ना, क्या बताई? एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकार। साकार कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रबल इंद्रिय से भी, काम इंद्रिय से भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए निमंत्रण मिल गया, तो एक सेकंड में क्या बनना पड़े योद्धा को, युरुवानी योद्धा को, एक सेकंड में, एक सेकंड में सर्विस के लिए तत्पर। और सर्विस सिविल में रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन में रहना पड़े या नहीं रहना पड़े, आकारी रहेंगे या साकारी रहेंगे, आकारी रहेंगे। और हो सकता है निराकारी स्टेज भी बने, क्यों? तो सर्विस फील्ड पर जो रहते हैं लगातार तत्पर, ये उन बच्चों को कौन याद करता है, हैं? सुप्रीम बाप याद करता है, जिस बाप का कोई बाप नहीं तो वो याद करेगा सुप्रीम बाप जिसको, तो उसकी आत्मा की क्या गति होगी, ऊर्ध्व गति होगी या निम्न गति होगी, ऊर्ध्व गति होगी। अगर पाप नहीं करते जाएंगे तो योग नहीं लगेगा, अधूरा योगी हो जाएगा। और ये सारे दिन में आधा घंटा 15 मिनट भी नहीं लगाने वाले हैं क्या? जो बोलते हैं हमारा तो लगातार बाबा के साथ योग है, बाप के साथ योग है, हम तो बाबा को याद ही में रहते हैं, हमारा तो सारा जीवन बाबा के साथ ही है, फिर कहते हैं आधा घंटा हमारा योग लगा, 15 मिनट लगा, या कहते हैं कि हमारा आज तो 15 मिनट भी नहीं याद लगा, सारा दिन याद ही नहीं आई। तो योग लगाने वाले हैं, हैं? पुरुषार्थ करना है हर एक को, क्या करना है, पुरुष अर्थ चेकिंग करनी है। सारा दिन हमने देह के लिए, देह के पोषण के लिए, देह के अर्थ कितना खर्च किया, तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन के संकल्प, समय कितना खर्च किया देह के अर्थ, देह की पालना पोषण, तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है हमने 15 मिनट भी नहीं याद किया। वाह, तो हर एक को आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना, पुरुष माने आत्मा, पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ, देह के लिए किया तो स्वार्थ है, स्व माने, स्व माने नहीं, स्व अर्थ, स्व अर्थ का मतलब ये आत्मा का स्व है शरीर, क्या? पहले हर एक कोई व्यक्ति जो है किसका सुख चाहता है, अपने बाप का सुख चाहता है, अपनी घरवाली का सुख चाहता है, बेटे बेटियों का सुख चाहता है, पहले किसका सुख चाहता है, रथ का सुख चाहता है, पहले अपना रथ, फिर उसके बाद पति या बाप। ऐसे नहीं होता किसी का कि कोई बाप के लिए करे, नहीं, हर एक को पहले किससे ज्यादा प्यार है, अपने रथ से प्यार है, उसे स्वार्थ ही कहेंगे। अपने रथ की तो चिंता ही न रहे, इतना निश्चय बुद्धि पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाने को नहीं रह गया, पक्का निश्चय बुद्धि कि मेरे को जो प्राप्ति होनी थी सर्वोपरि प्राप्ति मेरे को हो गई, मुझे अब कुछ भी इच्छा करने की दरकार नहीं। तो हरेक को पुरुषार्थ करना है, तो योग नहीं लगता है तो शायद अभी बहुत पाप पड़े हुए, क्या? एक सेकंड में निराकारी अगर स्टेज नहीं बनती है, निसंकल्प स्टेज नहीं बनती है, तो इससे क्या साबित होता है, हमारे पाप कर्म हैं या नहीं है, हैं? हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी राजाई के लिए, क्या? जो राजाएं होते हैं ना, ऐसे थोड़े सतयुग त्रेता में ही राजाएं होते हैं, द्वापर कलयुग में राजाएं नहीं होते, इस अंतिम जन्म में अभी कोई राजा है नहीं है, है या नहीं? हाँ, अभी अभी अंतिम जन्म में भी राजा हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे पूरे बंदा है माने, तो जो आज के अंतिम जन्म के राजाएं हैं वो देह के सुख के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के सुख के लिए कर रहे हैं? वो बड़े से बड़े देहवानी हैं, चारों जन्मों में चारों युगों में सबसे देह अभिमानी राजाएं कौन से युग में होते हैं? कलयुग में। और कलयुग के अंत में, मध्य में, आदि में? अंत में। अंत में जो राजाएं राजाई लेते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, कंट्रोलर शासक की पदवी पर बैठते हैं, वो देह अभिमान में इतने चकनाचूर होते हैं कि क्या सत्य है क्या सत्य है, बस अपना स्वार्थ ही सत्य है, बाकी चाहे भगवान भी गड्ढे में चला जाए उसकी भी हम परवाह, उसकी भी हम परवाह करने वाले नहीं। तो बताया पुरुषार्थ करने के लिए घड़ी घड़ी सोचना है कि अगर हमारा याद का पुरुषार्थ याद नहीं लगती है, एक सेकंड में हम निराकारी नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी राजाई के लिए, भले कलयुग के अंत की ही राजाई क्यों न हो, क्षणभंगुर। क्या कितने दिन के लिए बैठते हैं राजाई कुर्सी पर? ज्यादा से ज्यादा 5 साल, कोई तो शास्त्री जी की तरह 1 साल में ही खत्म, 1 साल की ही राजाई, कोई तो हो सकता है और भी कम रही हो, कोई हुआ है प्रधानमंत्री है? बहुत थोड़े, कुछ महीने के लिए ऐसे भी हुए। तो राजाई प्राप्त करनी है इस दुनिया में है, शासक बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी बड़ी मेहनत। किस बात की बड़ी मेहनत? हाँ, याद में रहने। किसकी याद में रहने की है? है वो मेल। चलो प्रजापिता ब्रह्मा है तो भी मेल तो है ना साकार निराकार का, और ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा है तो भी साकार निराकार का मेल है, तो वो एक सेकंड में याद आए साकार के साथ निराकार, सिर्फ साकार आया और निराकार याद ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं पुरुषार्थी जो साफ बोलते हैं हमें तो साकार का चेहरा भी याद नहीं आता। तो बताओ, बाबा तो बोलते कि छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़ा रूप साकार ही याद करो। प्रैक्टिस करते करते नंबर वार निराकारी स्टेज याद करने, स्टेज को याद करने वाले बन जाएंगे। तो प्रजा की तो बात ही कुछ है नहीं, यहाँ प्रजा बनने की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ क्या बात है? यहाँ पुरुषार्थ किस बात का है? राजा बनने का पुरुषार्थ। प्रजा जो है वो तो पुरुषार्थ करती ही नहीं पवित्रता का, योग का है। यहाँ तो जो राजा बनने वाले हैं, राज घराने में आने वाले हैं, वो ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाप को, घड़ी घड़ी उनको अनिश्चय पैदा होता है। किस पर? बाप के पाठ पर। तो जो प्रजा वर्ग है उनकी तो बात ही नहीं, प्रजा प्रजा योग करती है कि राजयोग करती है? प्रजा तो आती नहीं ज्ञान में, आते भी हैं संदेश लेते हैं बस, संदेश लिया और चले गए। पवित्रता का, याद का पुरुषार्थ करते हैं? हैं? करते ही नहीं। वो तो सजा खाई और वो सजा खा के चले ही जाएंगे। क्या तुम बच्चे तो चलो नंबर वार सजा तो खा लेंगे, तुम 8 तो सजा नहीं खाएंगे ना, सजा नहीं खाएंगे और बिना सजा खाए इस शरीर को इस दुनिया में रखेंगे या नहीं रखेंगे? कि शरीर सहित चले जाएंगे हैं? शरीर इस सृष्टि में तुम्हारा फिर भी रहेगा और तुम चले कहाँ जाएंगे? बाप के पास पहुँचेंगे या कहीं और चले जाएंगे हैं? कहाँ रहेंगे? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे तीन को याद करें कि एक को याद करें? फिर ये तीन क्यों बोल दिया? क्योंकि एक में अब जग अगर साकार बाप को पहचान लिया, जो बाप समान शिव समान बनने वाला है, तो उस एक में ही घर भी समाया हुआ है क्या? एक में ही स्वर्ग भी हमारा समाया हुआ है और वो हमारा बाप भी है जन्म जन्म अंतर। तो बोला जो प्रजा वर्ग वाले हैं वो तो राजयोगी नहीं बनेंगे, वो तो प्रजा हैं और सजा खाएंगे निश्चित रूप से, वो भी नंबर वार, और चले ही जावेंगे परम धाम में। वो इस सृष्टि पर उनका शरीर भी क्या होगा? उनका शरीर भी भस्म खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की हाँ है क्या? उनकी जन्म जन्मांतर की है प्रजा वर्ग में जाना। किसी जन्म में राजा नहीं बनेंगे, बाकी हम जो राजयोग सीखते हैं वो राजा भले न बने लेकिन ऐसे राजा भी भले न बने जो जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी के साथ ही बनेंगे क्या? ऐसे भी न बने, राजा भी न बने, वो है प्रजावर्ग की आत्मा। हम नहीं है उसको उस लिस्ट में, हम कम से कम 16108 की लिस्ट में क्या जरूर आएंगे। अच्छा, एक तो ये बात कि अपने आप से पूछना चाहिए कि आप ही मैंने बिना पुरुषार्थ किए ही आप ही ऑटोमेटिक अपने आप आने लगे याद, आप ही मेरी दिल शिव बाबा के साथ लगती है या कोई और देहधारियों के साथ अपने आप चली जाती है, ये क्या करना चाहिए? क्या कहा है? क्या चेकिंग करनी चाहिए? क्या पूछना चाहिए अपने आप से है? क्या पूछना चाहिए? बुद्धि की जो खिंचाव है वो ऑटोमेटिक बाप की तरफ जा रही है घड़ी घड़ी, या घड़ी घड़ी कोई देहधारी की तरफ जा रही है? है? ये चेकिंग करनी चाहिए। अगर देहधारी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब बाप से हमें राजाई का वर्षा अभी मिलने लायक स्टेज हमारी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि बाप तो उन्हीं बच्चों को याद करते हैं जो बच्चे सर्विस से बोले, क्योंकि सर्विस का हिसाब है क्या? जो ईश्वरीय सेवा जितनी जास्ती करेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे क्या? ये नहीं का याद करने वाले बहुत बड़े राजा बनेंगे क्या? शासक तो बनेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में ताजदारी बनेंगे ये नहीं कह दिया? जैसे शंकर, शंकर का पाठ दुनिया में सबसे जास्ती याद करने का है ना, फिर वो ताजधारी राजा बनता है संगम में। संगम की बात कर रहे हैं, नारायण सतयुग शुरू हो गया कि संगम रहा, कहाँ पहुंची जाती बुद्धि? वो स्वर्णिम संगम कहाँ कहा? पुरुषों में उत्तम प्रसिद्धि हो जाए वो युग की बात की, पुरुषोत्तम संगम युग। तो अभी पता चल गया, सबको नहीं पता चल गया, नंबर बार पता चल गया कि पुरुषों में माने आत्माओं में उत्तम से उत्तम पार्टधारी कौन है, ये पता चला या नहीं चला? तो वो हुआ पुरुषोत्तम, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में हो गया? प्रैक्टिकल में जब हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा। तो देखो बताया, अपने आप से पूछना चाहिए क्या, अरे हैं? अरे क्या पूछना चाहिए? हमारी बुद्धि का लगाव, और रोजमर्रे की जिंदगी में कोई भी काम करते समय हमारा बुद्धि का लगाव, हमारा दिल का खिंचाव ऑटोमेटिक किस तरफ हो जाता है? अगर ऑटोमेटिक घड़ी घड़ी बार बार शिव बाबा की तरफ खींच जाता है तो पक्का है क्या? क्या पक्का है कि हम राजा बनेंगे? क्यों? क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है, हमारी दिल बार बार उस तरफ खींच रही है तो उसकी भी दिल किसकी? शिव बाबा की दिल या शिरो पाटदारी दिल हमारी तरफ भी खींच रही होगी। वो बाबा जो है सर्वशैल बच्चों को याद करता है, तो हमको सर्वशैल स्वीकार कर लिया कि ये सर्वशैल बच्चा है, और जो सर्विस ज्यादा करता है इसका मतलब ये हुआ क्या है कि वो जिम्मेवार है, इसलिए बोल दिया था। ऐसे मत समझा करो कि दीदी दादी या दादाएं जिम्मेवार हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो जाने उनका काम जाने। नहीं, दीदी दादी दादाएं जिम्मेवार बनेंगे तो वो राजा बनेंगे। क्या? राजा ही करने के वो जिम्मेवार बनेंगे, और तुम जिम्मेवारी संभालोगे या किसी तो तुम राजा बनोगे। मुख्य बात क्या है? यज्ञ के कल्याण की बात है ना, यज्ञ की संभाल की बात है ना। यज्ञ की संभालने की जिम्मेवारी जो ज्यादा उठाएंगे वो उतने बड़े राजा बनेंगे, जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो उतने बड़े राजा नहीं बने। मेरा दिल शिव बाबा के साथ लगता है या कोई और देहधारियों के साथ? जास्ती लगता है, घड़ी घड़ी दिल को चेक करना है। क्या कहा? बड़ी ऊंची बात बोल दी। करता कोई नहीं चेकिंग? करते हैं? नहीं करते। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे। हाँ, कर्म बंधन, बंधन है फलाना है, ब्राह्मणी का ब्राह्मणी के साथ बंधन लग जाता है। तेरी की है ब्राह्मणी का ब्राह्मणों के साथ बंधन लग जाए वो तो तुम तो भी थोड़ा बात लगती है कि 63 जन्म का हिसाब किताब ऐसा है फीमेल्स का कि मेल के साथ दिल लग जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है संगम में? ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है, या ब्राह्मणी की कोई ब्राह्मण के साथ दिल लग जाती है, ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है। माया तो जरूर बच्चों को तूफान लाएगी ना, ये दिल लग गई तो ये दिल लगने के जो संकल्प हैं वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? नहीं आना चाहिए, तो जो नहीं आना चाहिए वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी दिल में समझते हैं कि ये गलत बात है, फिर भी आ जाता है दिल में संकल्प, वो आ जाता है। इसका मतलब आया, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया माया। मां माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा था, उसको कहते हैं माया। आया लेकिन हम समझते हैं आना नहीं चाहिए, फिर भी आया तो उसका नाम रख दिया ड्रामा प्ले अनुसार माया। ये क्या है, माया कोई औरत है या ये माया अपने अंदर की कमजोरी है? कमजोरी है, कमजोरी का नाम माया रख दिया। पूर्व जन्म की कमजोरी हमारे अंदर आत्मा में संस्कारों में भरी हुई है। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणियों से, ब्राह्मणी का ब्राह्मणियों से, ब्राह्मणों से दिल लग जाता है, माया फिर जरूर तूफान लाएगी। बच्चे इस ज्ञान में आए हैं और बच्चों को ही मालूम पड़ता है कि ये जो अंदर आया दिल में वो रंग है या राइट है, दुनिया को इस बात का पता नहीं है। मेरी जो अवस्था है और साथी को सोचना है, चेक करना है, मेरी इस समय जो अवस्था है, इस समय वो अवस्था कैसी है? हा? कैसी है? हा? अपने दिल से पूछ सकते हैं कि ऑटोमेटिक हमारी जो लगाव है, लगन है, कहाँ कहाँ चली जाती है या एक बाप में जाती है? ऑटोमेटिक सहज सहज एक बाप में जाती है, घड़ी घड़ी जाती है। तो समझते हैं कि हमारा योग अच्छा लगता है, पाप कर्म लगभग भस्म होने लगे हैं या हम नजदीक पहुंच गए बाप के। नहीं तो हमारे पाप कर्म अभी बहुत हैं, अवस्था खराब है, हमारी शिव बाबा के साथ लगती है या कोई प्राणी के साथ लगती है, क्योंकि कोई कोई की बुद्धि तो कुत्ते पालने में लगी रहती है, घड़ी घड़ी कुत्ता याद आता है। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि का लगाव किसे लग गया है? विदेशी औरतें तो ज्यादातर देखा जाता है, जबड़े जबड़े छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, कार में बैठी और गोद में लिया और बड़े प्यार से पुचकारती जाती है, वो मुंह चाटता जाता है। क्या दुनिया हो गई, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। ये हालात कर दी देवान ने, काम विकार ने, देहधारियों के साथ योग लग जाती है। कुत्ते की भी तो देह होती है कि नहीं? चलो वो तो जानवर है, कुत्ते जैसे जो मनुष्य होते हैं, क्या आज एक के साथ, कल दूसरी कुतिया के साथ, तीसरी कुतिया, चौथी कुतिया, उनका दिल एक जगह रहता ही नहीं। समझते हैं कि ये कुत्ते हैं, वे बाजारू कुत्ते हैं। क्या बाजार में क्या होता है? अरे नोटों की गड्डियां चलती हैं कि नहीं? तो बाजारू कुत्ते हैं, इनसे दिल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? हैं? बाजारू हैं तो ये परमानेंट रखेंगे या ठोकर मार के चले जाएंगे? चले जाएंगे। देहधारियों के साथ ऐसी दिल लग जाती है, ये बड़ी जांच करनी पड़ती है। क्या कहा? थोड़ी बहुत जांच नहीं, ये बड़ी जांच करनी पड़ती है। लगती है दिल तो समझें कि हमारा पाप कर्म बहुत कुछ है। हमारी जो माया है हमारे साथ लगी हुई, कभी न कभी कोई न कोई गड्ढे में ले जाके डाल देगी। क्या गड्ढे में ले जाके डाल देगी या ऊपर फेंक देगी? है गड्ढे में ले जाके डाल देगी। टैली करो, दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ कोई माया लगी थी कि नहीं? नाम दे दिया माया बेटी, गड्ढे में जाके डाल दिया कि नहीं डाल दिया? कहाँ डाल दिया? गड्ढे में कहाँ डाल दिया? तो सूक्ष्म बतनवासी हो गए, ऊपर चले गए, कहाँ गड्ढे में डाल दिया? गड्ढे में डाला क्या? अरे ब्रह्मा बाबा के साथ जो माया बेटी लगी हुई थी उसने गड्ढे में डाला क्या? अरे कि सूक्ष्म बतनवासी बनाया है? सूक्ष्म बंधन में डाल दिया। मना अच्छा किया या बुरा किया है? सूक्ष्म बंधन में जो है वो विधर्मी आत्माएं गिरती हैं। सूक्ष्म बंधन माने भूत प्रेतों का बंधन। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो भूत प्रेतों को पूजती हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानती। जब देवी देवताओं को नहीं मानती तो उन्हें देवी देवताओं से प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो भगवान को पहचानेगी मानेगी क्या? जो देवी देवताओं से ही प्राप्ति नहीं कर पाती फिर देवी देवता बनाने वाले को कैसे प्राप्ति करेंगी? सवाल ही नहीं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं। भूत प्रेत बनना माने कहाँ चले जाना? गड्ढे में चले जाना। तो माया ने क्या किया? माया बेटी ने ब्रह्मा बाबा को भूत प्रेत बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। जैसे औलिया लोग होते हैं ना, भूत प्रेतों को पकड़ करके बोतल में बंद कर देते हैं, नहीं तो कहीं जमीन में गड्ढा खोदते हैं उसमें दाब देते हैं। बाप रे, ये सब क्या है? इनका संग हमको न लगा होता, ये माया ना आई होती, इनका कमजोरी हमने संग के रंग से न ली होती तो अच्छा था या खराब था? है? जान लिया इसका कुत्ते का स्वभाव है। तो बात बुद्धि से लगती है ना, ये कुत्ते का स्वभाव है, इसका तो परमानेंट प्यार हो ही नहीं सकता। तो भी कि दिल है कि मानता नहीं, तो बताया कि वो आत्माएं फिर छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ संगम युग में भी वो आत्माएं माया बनकर हमारा पीछा करती हैं। तब ही बाप कहते हैं ना कि अपने अंदर में जांच करो, अपने आप से पूछो। देखो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, ये भी तो नॉलेज है। जैसे वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो नॉलेज है, स्टूडेंट्स अपने अंदर में समझ सकते हैं। नॉलेज लेते समय स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि हम परीक्षा में फाइनल में पास होंगे या फेल हो जाएंगे। मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, अंदर में जान जाते हैं। स्कूल में भी हम देखते हैं कि हम ऊपर में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं या पिछाड़ी में बैठते हैं। क्या अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर के सामने जाके बैठेंगे, टीचर कुछ पूछेगा तो उल उल के जवाब दे देंगे। अंदर में समझते हैं कि हम तो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, टीचर की क्लासेस ही अटेंड नहीं किए, क्लास में एब्सेंट होते रहे हैं, घर में भी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे?
पीछे,
और पीछे बैठते हैं। तो भले यहाँ स्कूल का वो नंबर्स नहीं है बैठने का कि भाई तुमको आगे बैठना है, तुमको पीछे बैठना है, बाबा ने अभी किसी को ऐसे बोला नहीं है कि आगे बैठो या पीछे बैठो, बीच में बैठो, उठने बैठने करने का कोई ऐसा नंबर नहीं है। परंतु ये तो अपने अंदर में पूछना है ना, आत्मा को अपना कल्याण इस समय अपने आप करना है। आत्मा को बाप ने, बाप मिला ही है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे अगर तुम पुण्य आत्मा बनने चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता दी फर्स्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजाएं बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी। क्या अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है, ऊंचा पद पाना है, तो क्या चीज फर्स्ट? पवित्रता फर्स्ट। कौन सी पवित्रता फर्स्ट? तन भी पवित्र जगह लगे। क्या तन का लगाव कहाँ लगे? तन कहाँ स्वाहा हो? यज्ञ कुंड में चीज स्वाहा हो जाएगी, जल जाती है कोई चीज, राख बन जाती है तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो, चाहे मन है या मन के संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक की जगह अखबारों में भी पढ़ लिया, टीवी भी देख लिया, टीवी चैनल्स भी देख दिए, रेडियो भी सुन रहा क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेताएं क्या कह रहे हैं, सब का सुना, संग किया ना कानों से, रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय कहाँ दिया? कुसंग में दिया या बाबा की वाणी जिसे सत्य कहा जाता है, सच्ची वाणी, उसमें हमने अपना मन बुद्धि का संग लगाया? तो पवित्रता फर्स्ट है, हर प्रकार से पवित्रता फर्स्ट है। संगम युग में तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब बातों में चेक करना है कि हम पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि तुम आए ही हो पवित्र, आए भी हो तो जानते हो कि हम पहले पवित्र थे जब इस दुनिया में आए कि अपवित्र थे। है हम जितना स्टेज में पवित्र थे उतनी स्टेज वाली दुनिया में आते हैं। तो पवित्र थे और अभी भी जान लिया क्या कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, किस लिए? पवित्र रहने के लिए। पतित तो कोई भी पवित्र धाम में जा ही नहीं सकता। क्या न शांति धाम में न सुख धाम में कहाँ नहीं जा सकता? शांति धाम में भी नहीं जा सकता, आत्मा का धाम और देह का धाम भी है। देह के धाम दो हैं, सुखदाम और दुखदाम। हर मनुष्य आत्मा को इन दो धामों में, तीनों धामों में जाना जरूर पड़ता है। देह का धाम दुखदाम, कोई लंबे समय तक वास करेंगे, और सुखदाम में एक दिन, एक जन्म के लिए आ गएंगे, तो फर्क पड़ जाएगा ना। और कोई लंबे समय तक सुखधाम में आवेंगे, देह होगी या नहीं होगी, देह से ही सुख लिया जाता है, देह की इंद्रियों से सुख लिया जाता है। तो जो पवित्र हैं वो तो ऊपर में जा ही नहीं सकते, पतित हैं वो नहीं जा सकते, और ऊंच पद भी नहीं पा सकते। क्या जितना पावन बनती है आत्मा उतना शांति धाम में ऊंचे स्टेज में जाएगी, ऊंची उड़ेगी, हल्की हो जाएगी, और जितना पतित बनती है, पतित रह जाती है, पतित माने देहधारियों में लगाव रह जाता है, तो वो देहधारियों का लगाव नीचे खींचेगा या ऊपर जाने देगा? नीचे ही खींचता है, तो नीचे रह जाती है, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो सदैव अपने दिल से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और कितना सर्विस के लिए दिल करती है, सर्विस के लिए हम कितना करते हैं। क्योंकि याद सेवा के लिए भी की जाती है, याद का कनेक्शन मन बुद्धि से है, जो आत्मा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावर है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावर से हम अगर याद करेंगे तो उसे सेवा भी कर सकते हैं वाइब्रेशन के द्वारा, या नहीं कर सकते हैं? सबसे ऊंची सेवा करेंगे या नीची सेवा होगी? है, सबसे ऊंची सेवा होगी वाइब्रेशन से। क्योंकि अभी 80 साल हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करते करते, कौन सी सेवा तक पहुंचे? है, तन की भागदौड़ की सेवा की, वाचा की सेवा की, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा की, दृष्टि की सेवा की, तो ये सब स्थूल शरीर की सेवाएं हुई, या निराकारी आत्मा की डायरेक्ट सेवा हुई? किसकी सेवा हुई? इंद्रियों की, शरीर की सेवा हुई। 80 साल तक ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके हम भाग दौड़ किए, कहीं प्रदर्शनी में भागे, कहीं मेले मलाखड़े में भागे, कहीं कॉन्फ्रेंस में भागे, कहीं घरों घरों में पर्चे बांटे, भाग दौड़ करते रहे ना। दुनिया के कितने परसेंटेज आत्माओं को संदेश दे पाया? अरे संदेश ही नहीं दे पाया, जो संदेश लेने वाले प्रजावर्ग की शूटिंग करेंगे, फिर संदेश लेने के बाद होता है पुरुषार्थ, आत्मा के लिए प्रयत्न, तो वो तो करने की बात ही नहीं हुई शुरू। क्या जब तक बेसिक में ब्राह्मण रहे तो हमने क्या किया, प्रजा बनाई या राजा बनाए? प्रजा बनाई, भाग दौड़ करते रहे, ईश्वरीय सेवा के नाम से तन की ताकत लगाई, और तन से जो धन पैदा होता है वो धन भी लगाया, तो वो भी तन की ताकत है या ऊंची ताकत है? है? यही बात तो गीता में कही गई है। क्या द्रव्य जाना, द्रव्य ज्ञान से चीजों स्थूल चीजों के ज्ञान से, चाहे नोट की गद्दियां हो, चाहे कोई भी चीज हो, मकान हो, दुकान हो, द्रव्य ज्ञाना ज्ञान दानम विशिष्यते। गीता में भी यही बात बोली, ज्ञान दान विशेष है या द्रव्य दान विशेष है? ज्ञान दान विशेष। ज्ञान दान के नाम पर सिर्फ हमने इतना बताया कि आत्मा ज्योति बिंदु है और आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। क्या रिजल्ट नहीं निकला? ये रिजल्ट नहीं निकला कि राजयोगी कोई बन सकते हैं इतना ज्ञान लेने से, कि निराकार आत्मा को समझो, निराकार आत्मा के बाप को सानो, याद करो, तो कोई राजा बन सकता है क्या? है? निराकार को याद करने वाले कोई राजा ही पाते हैं या सिर्फ मनुष्यों के बनाए हुए धर्म में आते हैं, देह के धर्मों में आते हैं? राजा तो कोई बनते ही, तो वो बात तो खत्म हो गई बेसिक में, सिवाय संदेश देने के और हमने कुछ भी नहीं किया। अब आए एडवांस ज्ञान में, एडवांस ज्ञान में हमने ज्ञान की गहराई को पकड़ा। हम आत्मा, तो हम कौन सी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, कौन से वंश विशेष में हमने जन्म जन्मांतर ज्यादा पार्ट बजाया? इस बात के मनन चिंतन में अगर आत्मा गई, पुरुषार्थ में गई, ऐसा हमने ज्ञान लिया, कानों से सुना, समझा और मुख से बोला और दूसरों को समझाया, तो हम एक कदम आगे बढ़े या पीछे हटे? सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े, माने सुनने सुनाने से ऊपर हटकर हम समझने और समझाने की स्टेज पर आ गए। तो भी क्या संसार में हमने आवाज फैला पाई है? संसार में, देश विदेश में जितने धर्म हैं, इन सभी धर्मों में जो अलग अलग राजाएं हुए हैं, उन राजाओं के हमने चुनाव कर पाया? नहीं कर पाया। तो 80 साल में भी हमने जो काम नहीं कर पाया है, वो काम अब अगले 20 साल में अगर मन को एकाग्र करने की ताकत हमारे अंदर आ गई, क्या क्या ताकत? जो बाप कहते हैं मेरे को याद करो, मेरे को याद करो, मन तेरी नाक को याद करें कि कान को याद करें कि तेरी टांग को याद करें, किसको याद करें? हाँ, किसको? हाँ, मेरी आत्मा को याद करो, मेरी आत्मा ज्योति बिंदु। क्या कहने वाला क्या कहता है? मुझे मुझे याद, माने तुझे जिसको याद करूं, तू कौन है असलियत में? ज्योति बिंदु आत्मा। वो कहने वाला वस्तुतः सच्चाई में ओरिजिनली कहने वाला एक है या दो है? जो दूसरा कहता है वो तो सदाकाल के लिए साबित, वो तो बीच में ही था सर। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। बीच में ढसर होता है माने चंद्रवंश तक पहुंच जाएंगे, चंद्रवंशी तक बनेंगे, सूर्य तक प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो सूर्य तक की स्टेज की प्राप्ति करने के लिए मैं कौन हूँ ये कहने वाला कौन है? वो निराकार ज्योति बिंदु है। अगर ऐसे समझें तो उसको मुख है कहने के लिए? वो तो कह ही नहीं सकता। क्या मत मना भव? दूसरी बात, उसको मन है, है? जो तेरे मन में समा जाऊं, उसको मन भी नहीं है। तो वो इस सृष्टि पर आता है, और साकार मनुष्य सृष्टि में मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है, तब उस हीरो पार्टधारी को ये ज्ञान मिलता है क्या कि मैं कौन हूँ, इस सत्य रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है, और इस रंगमंच पर जन्म जन्मांतर मेरे से कनेक्टेड रहने वाली आत्माओं का क्या पार्ट होगा, ये जानने की उसे लालसा होगी या नहीं होगी है? जिन आत्माओं का उससे कनेक्टेड जन्म जन्मांतर का ये पार्ट होगा, क्या पार्ट है? ये पार्ट होगा जन्म जन्मांतर का सहयोगी बनने का, वो सहयोगी बनने का पार्ट यहाँ दिखाई देगा या नहीं देगा है? यहाँ सहयोगी बनने का पार्ट दिखाई देगा उस हीरो पार्टधारी के साथ, तो वो जान जाएगा ना क्या कि अमुक अमुक आत्माएं जब मैं राजयोग सीख कर जन्म जन्मांतर राजा बनूंगा तो अमुक अमुक आत्माएं मेरे को सहयोग देंगी या धोखा देने वाली है? सहयोग देंगी। तो यहाँ पहचान हो जाएगी कि नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा का अपनी अपनी दुनिया होती है 84 जन्म में, कि सबकी एक जैसी होगी है, अलग अलग दुनिया, अलग अलग संबंध संपर्क, 84 जन्मों में एक ही जैसे संबंध हर एक आत्मा के साथ तोड़ी रहेंगे, तो हर आत्मा की दुनिया अलग अलग है, हीरो पार्टधारी की दुनिया अलग, वो जान जाएगा सबसे पहले कि मेरे जन्म जन्मांतर के सहयोगी कौन कौन है, कहाँ जान जाएगा, संगम युग में या अगले जन्म में, संगम युग में जान जाता है। तो बताया कि अच्छे अच्छे योगी बच्चे कौन है, क्या योग लगाने वाले किसके साथ, किसके साथ, हीरो पार्टधारी समझेगा कि नहीं कि इनका योग, जो योग लगाता है वो सहयोगी बनता है कि नहीं, योगी सो सहयोग, ये निशानी है योगी की, क्या पहचाना जा सकता है कि उसका मेरे साथ अगर योग लगा हुआ है तो किसका सहयोगी बनेगा, मेरा ही सहयोगी बनेगा, दूसरे के साथ योग लगा हुआ है तो दूसरे का सहयोगी बनेगा या मेरे बनेगा, दूसरे का बनेगा। तो योगी सो सहयोगी के हिसाब से जान जाएगा कि मेरे साथ पावन बनने वाले कौन कौन हैं। जो मेरे साथ पावन नहीं बनेंगे वो या तो मेरी प्रजा में आ जाएंगे या तो नीचे के धर्मों में चले जाएंगे, ऊंच पद नहीं पा सकते हैं वो जो मेरे को धोखा देंगे। धोखा देने वाली आत्माएं सूर्यवंशी होंगी या चंद्रवंशी या दूसरे धर्म वंश की है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले जरूर धोखा देने वाले होंगे, जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, दूसरे धर्मों का इस संसार में आगमन हुआ, धर्म पिताएं आए और भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। शूटिंग कहाँ होती है, ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग होती है, वो ऊंच पद नहीं पा सकते कौन है, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशियों को धोखा देने वाली आत्माएं हैं, वो सूर्यवंशी में ऊंच पद तो पा ही नहीं सकते, किसी जन्म में नहीं पा सकते, चलो सतयुग में आ जाएंगी लेकिन प्रजापद में जाएंगी, क्या बहुत में बहुत दास दासी बन जाएंगे होस्टलर, क्या चलो मान लो दोबारा आ भी गए धोखा देने के बाद माफी मांग ली तो भी क्या होगा, जो ऊंच पद वो पाए सकते थे वो ऊंच पद नहीं पाए सकते। तो सदैव अपने दिल से पूछना है, अपने से पूछना है, हम कितना बाबा को याद करते हैं और बाबा के लिए हम तन से मन से धन से समय और संपर्क लगाकर कितनी सेवा करती है। और जो टाइम अपना घुमाते हैं वो किस प्रकार से घुमाते हैं, स्वार्थ में टाइम जाया करते हैं या ईश्वरीय सेवा में, जिसे परमार्थ कहा जाता है, विश्व सेवा में अपने शक्तियों को लगाते हैं। और हमारे बहन और भाई जो इस स्कूल में पढ़ते हैं उन पर भी नजर रखनी चाहिए, वो क्या क्या करते हैं। क्यों, तो परचिंतन हो गया, उन पर नजर रखें या न रखें, रखें, उन पर नजर रखेंगे तो परचिंतन है या नहीं है। परचिंतन, हमारा भाव अच्छा हो तो भी, क्या हम उन पर नजर रखें कि ये देखो धोखा देने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी सेवा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ में ज्यादा लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा बहुत कम करते हैं, देह के संबंधियों में सारी कमाई लगा रहे हैं, ये हम अगर उनको देखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे तो हमारा परचिंतन। लेकिन देखने का भाव हमारा क्या है कि हाँ इनको हम जैसा पुरुषार्थ करते हुए देखें वैसा सारा बाप को बताएं कि देखो ये इनकी चाल है, होशियार रहना। 2467 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये तो जरूर है बच्चे कि जब कोई नीचे बैठे रहते हैं तो स्टूडेंट्स के भी मन खाते हैं कि हम ऊपर कूदें, ये करें वो करें, परंतु ऐसी उनकी ऊंची चढ़ने की चलन भी तो होनी चाहिए, ठीक चलन भी तो हो। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होते हैं कि अगर मैं किचन में भी काम करूं करुणा सेवा का तो भी मैं काम करते करते बैठती हूं या हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाती हूं। मान लो सहयोगी बहन है, सहयोग नहीं देती, किचन का काम अधूरा पड़ा रहेगा या टाइम से खाना नहीं बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा। टाइम से खाना ही नहीं मिलेगा क्योंकि खाना परोसने का संगठन में टाइम तो निश्चित होता है ना। गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई भी संस्था में चले जाओ तो देखने में तो आता है ना कि टाइम से खाना दिया जाता है, टाइम से बनता है। टाइम से उनके लिए खाना नहीं बना और आधे लोगों ने खा पाया, बाद में घंटी बज गई, चलो दूसरे काम में वो चले गए। तो किचन में मैं कहां तक हड्डी हड्डी सेवा कर रही हूँ, हड्डी हड्डी माने थक गए और फिर भी हम हड्डियों को चला रहे हैं, तो हड्डी हड्डी स्वाहा किया या नहीं किया है, स्वाहा किया। तो ये देखना है कि मैं बैठ गई आराम करने के लिए, जाकर के सो गई या जिम्मेवारी को संभाल लिया, भले कोई सहयोगी नहीं बन रहा है तो भी जिम्मेवारी संभाली या बैठ गई। काम करती हूँ तो अपने सिर से बोझा उतारती हूँ या नहीं उतारती हूँ। ऐसे टाइम पर जब कोई सहयोगी नहीं बनता है और हम सेवा में लगे रहें तो बड़ी बात हो गई या छोटी बात है। ज्यादा से ज्यादा बोझा उतरेगा या कम उतरेगा, ज्यादा बोझा उतरेगा, बड़ी बात हो गई बच्चों के लिए कि हमारे सिर से ये जो पाप का बोझा है, रावण राज्य में ये बोझा शुरू हुआ है क्या, वो हम सिवाय याद के उतार ही नहीं सकते। जब रावण राज्य हुआ तो रावण राज्य में हमने ऐसे लोगों का संग किया जिन्होंने हमें देवहन के गड्ढे में, काम विकार के गड्ढे में डाल दिया, और उसके कारण हमने जो राज्य की सेवा करनी थी वो सेवा नहीं की क्या, अपनी मौज मस्ती में लग गए, तो वो पाप का बोझ हमारे ऊपर चढ़ गया पूर्व जन्म में, तो वो बोझा हम नहीं उतार सकेंगे, सिवाय याद के उतर ही नहीं सकता। और जन्मों में, पिछले जन्मों में तो हमें तरीके का पता नहीं था क्या है। हाँ,
कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए,
अभी तो पता लग गया ना कि हम ऐसे का संग करें जो शशि रूपी रंगमंच पर हीरो की तरह श्रेष्ठ पार्ट धारी रहा है। क्या राजाई में भी बल रहा तो भी राजाई करते समय कभी प्रजा के पालन में बेहोश होकर के नहीं रहा, क्या गफलत में रहा, क्या गफलत में नहीं रहा, जी जान लगा करके अलर्ट रहा। तो ऐसे का संग करेंगे तो हम नीचे जाएंगे, पुरुषार्थ में नीचे जाएंगे, ऊंचे जाएंगे। तो सिवाय याद के, ऐसे की याद के सिवाय हमारा पुरुषार्थ चढ़ ही नहीं सकता और पाप कर्म भस्म हो ही नहीं सकते। हमारा योग बाप के साथ कितना लगता है, ये शूटिंग हो रही है, कब की, पूर्व जन्मों की शूटिंग हो रही है कि हमने पूर्व जन्मों में बाप का साथ कितना दिया, बाप का सहयोगी कितना बना, और जब सहयोगी बना तो संगम युग में योगी तो दिखाई देगा या नहीं देगा, योगी सो सहयोगी, कैसे, जो यहाँ जितना योगी है बाप का, वो पूर्व जन्म में बाप का उतना ही बड़ा सहयोगी बनकर रहा। मान लो 8 पक्के सहयोगी हैं जन्म जन्मांतर के बाप के, तो क्या साबित होता है, वो ही अष्टदेव जिन्होंने पूर्व जन्मों में बाप का नंबर वार सहयोगी पने का पाठ बजाया है, वो ही आत्माएं इस जन्म में भी नंबर वार सहयोगी जरूर बनकर के रहे। तो ये बोझ उतारने के लिए हमको योग बल जरूर चाहिए, पापों का बोझ कैसे उतरेगा है, योग बल, लगाओ बल, लगन, लगाओ अटैचमेंट के द्वारा। किसके साथ अटैचमेंट, कोई के भी साथ नहीं, एक ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, उस ऊंचते ऊंच पार्टधारी के साथ जितना हमारा लगाव होगा उतना हम पुरुषार्थ में ऊंचे जाएंगे, पहचानेंगे तब लगाव होगा, कि बिना पहचाने लगाव हो जाएगा है? पहले क्या करना पड़े, पहचान करना पड़े। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना योग लगता है, किसके साथ, बाप, कहीं बोला ही नहीं कि बाबा के साथ या साकार के साथ, या ये भी नहीं बोला शिव बाप के साथ, नहीं, क्योंकि बड़े से बड़ी चीज है ना, क्या बड़े से बड़ी चीज है, है? बाप का पार्ट जो है वो बड़े से बड़ी चीज है ना, बड़े से बड़ी चीज परम नाम में या इस संसार में, बड़े से बड़ी और बड़े से बड़ी छोटी से छोटी, ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा कहाँ होता है, इस संसार में होता है ना। तो बहुत ऊंचे से ऊंची चीज है, अरे गाया हुआ है क्या, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, क्या क्या गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और इसके साथ एक बात और जोड़ दी, और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आकर के कहते हैं कि मुझे ऊंचे ते ऊंचे अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। क्या कहा है, कहाँ आकर कहते हैं, आकर के कहते हैं, कहाँ आकर के कहते हैं, इस सृष्टि में आकर के कहते हैं, हैं कि मुझे याद करो, वो कहते हैं नीचे आकर मुझे याद करो, जो नीचे वाला है वो तुम्हारे पास आके नहीं कहता है, वो नहीं आता कभी तुम्हारे पास है, उसे तुम बुलाते नहीं हो है? जो बुलाने से कभी आता ही नहीं है उसको बुलाया जाता है, या जो बुलाने से आता है उसे बुलाया जाता है? तुम प्रधानमंत्री को बुलाओ, बार बार बुलाओ, आएगा? तो फिर क्या करोगे, बुलाना बंद कर दोगे या बुलाते ही रहोगे जिंदगी भर? क्या करोगे है, बंद कर देंगे। तो आता कौन है और बुलाया किसे जाता है? भक्ति मार्ग में 2500 साल बुलाते रहे, ए पतित पावन आओ। जो बुलाते नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं। बुलाते हैं तो आते हैं, आते हैं उनके पास तो संग का रंग लगता है। जब संग का रंग लगता है तब क्या होता है, हम पतित से पावन बनते हैं। तो हरेक को अपनी जांच करनी है, किस बात की, कि मेरा उस ऊंचते ऊंच बाप के साथ कितना योग लगता है, कितना अटैचमेंट जाता है, कितनी लगन लगती है, लगती है या दूसरे के साथ ज्यादा लगती है? ऑटोमेटिक किसके साथ लगती है? ये चेक करना है। बाप भी इसलिए समझाते हैं, ये घड़ी रंग है क्या, कौन है, 7 बज रहे कब से? ये 1000 साल से बंद है, तो बंद है तो पड़ी रहे, बाढ़ में जाए। हाँ जी, हैं? हाँ जी, 4 पैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो बाप समझाते हैं रोज रोज अपना कल्याण करना है, अपने ऊपर चेकिंग करके कि हम सारे दिन में, बाबा ने कहा ना अपना पोता मिल देखो, कि हमने सारे दिन में कितना याद किया। कम से कम इतना तो करो कि फर्स्ट क्लास याद रही या थर्ड क्लास याद रही, या मीडियम याद किया या बिल्कुल याद ही नहीं किया। इतना रोज का पोता मिल तो रखो। फर्स्ट क्लास याद, सुबह से शाम तक याद किए, लगन लगी रहेगी, या तो सेवा की लगन लगी रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास के ध्यान रहे या न रहे, ईश्वरीय सेवा की लगन लगी रहे। तो जिसकी सेवा करेंगे उसकी याद नहीं आएगी। और योग का पोता मिल भी दूसरा, चलन का भी पोता मिल, कि चलन अच्छी रही, किसी को धोखा तो नहीं दिया। धोखा देना ये अच्छी चलन है या बड़ी गंदी चलन है? कोई फालतू झूठ तो नहीं बोला? अरे कोई काम से झूठ बोलो जिससे अपना या दूसरे का कल्याण हो। गाय जा रही है कसाई पकड़ने के लिए, पीछे भाग रहा है, हमने झूठ बोल दिया कि गाय इस रास्ते में नहीं गई, उल्टा रास्ता में, ओ उधर गई, हमने देखा, जा जल्दी जाओ, तो ये झूठ बोलना हुआ है? झूठ बोला लेकिन, लेकिन काम के लिए झूठ बोला। गाय जो समाज के कल्याण के लिए सबसे बड़ा पशु है, हमने उसका रक्षण किया, हमारी भावना अच्छी थी, इसलिए हमने झूठा फालतू झूठ नहीं बोला। काम का झूठ बोला या फालतू बोला? काम का झूठ बोला, क्योंकि यज्ञ के हैं ना हम। हम काहे के हैं? हम यज्ञ के हैं। यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा के लिए, ज्ञान यज्ञ की हमने सुरक्षा की, कसाई कन्याओं के पीछे लगे हुए हैं, कन्याओं को बाड़े में से निकाल निकाल करके ले जा रहे हैं गौशाला में से, और वो कन्याएं इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए भाग रही हैं, और उन कसाईयों को हमने सीधा रास्ता बता दिया कि ये इधर भाग के गई, तो वो उसे काटेंगे ह्यूमन गईयों को या छोड़ देंगे? काटेंगे, तो क्या करना चाहिए है? हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे इस यज्ञ की सुरक्षा हो, गईयों के द्वारा ही इस यज्ञ की सुरक्षा होती है। किसके द्वारा? गईयों के द्वारा सुरक्षा होती है, बैलों के द्वारा सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? गोपाल कन्हैया गाया हुआ है। यज्ञ में रह करके कोई डिसर्विस तो हमने नहीं की, इतने साल से हम ज्ञान यज्ञ में हैं, और जब परीक्षा का टाइम आया तो क्या कर दिया है? गाय की डिसर्विस कर दी, गाय को कटवाने का पुरुषार्थ कर दिया, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए हैं। ऐसे नाम रूप में फंसे हुए होने रहने वाले यज्ञ पिता की डिस सर्विस करेंगे या सर्विस करेंगे है? नाम रूप में फंसे हुए, गैया का नाम रूप देखा या गैया के अंदर का गुण देखा है? बाहरी रूप देखा कि ये फीमेल चूला है, कम एज है, नौजवान है, ये तो देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि ये कितनी कितनों आत्माओं का कल्याण ज्ञान दूध दे करके कर सकती है, ये नहीं देखा। यज्ञ पिता की डिस सर्विस कर दी। यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ। यज्ञ पिता कौन है? हैं? कौन है? हाँ, यज्ञ पिता शिव नहीं है, यज्ञ पिता ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, यज्ञ पिता है जो यज्ञ के आदि से ही रौद्र रूप धारण किया। कितना रौद्र रूप? कितना रौद्र रूप धारण किया कि देहम वा पापयामि कार्यम वा साध्यामि, देह भले चली जाए तो भी इस आत्मा के द्वारा हम जो कार्य का जिम्मा लिया है वो कार्य को सिद्ध करके रहेंगे, सफलता प्राप्त करके रहेंगे। वो है यज्ञ पिता रुद्र, जिसे कहा जाता है, जिसके नाम पर इस यज्ञ का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ पड़ता है। और कैसा ज्ञान यज्ञ? ऐसा नहीं कि 42वें शरीर छोड़ने से खत्म हो गया हो। पहले गीता के अर्थ करके सुनाते थे तो वो गीता का सही अर्थ संपन्न नहीं हुआ, अभी बीच में ही यज्ञ पिता ने शरीर छोड़ दिया तो क्या खत्म हो गया? नहीं, अविनाशी है। बल 47 में फिर शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? धोखेबाज के द्वारा शुरू हुआ या सच्ची आत्मा के द्वारा शुरू हुआ? धोखा दिया, बीच में यज्ञ छोड़ करके भाग गया, झगड़ा कर लिया। मिसाल दिया है उदयपुर का, वो उदयपुर नहीं जो राजस्थान का है, ये बेहद के राजस्थान का उदयपुर, यज्ञ के आदि में जहाँ से ज्ञान सूर्य उदय होता है, आदि में सो अंत में उदय होता है, संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो उदयपुर की बात बताई कि ये उदयपुर के बच्चे आपस में लड़ मरते हैं और बाप की डिस सर्विस कर देते हैं। क्या करते हैं ये उदयपुर के लड़के बच्चे? कौन से थे यज्ञ के आदि में? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, रुद्रमाला के और विजयमाला के। वो बच्चे आपस में लड़ पड़े और लड़ करके क्या हुआ? यज्ञ पिता का विध्वंस, यज्ञ पिता के द्वारा स्थापन किए हुए अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का विध्वंस करना चाहा और अपने तरीके से शुरुआत कर दी। क्या शुरुआत कर दी? क्या नाम रखा? ब्रह्मा कुमारी श्री ज्ञान यज्ञ। तो ये अम्मा का यज्ञ हो सकता है या यज्ञ पिता का हो सकता है? यज्ञ पिता कहा जाता है, यज्ञ माता थोड़ा ही कही जाती है मुखिया। नहीं, यज्ञ माता है भी तो यज्ञ पिता की सहयोगी नहीं होनी चाहिए। वो यज्ञ पिता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र रुद्राणी नहीं। तो बोला यज्ञ पिता की सेवा करनी है, यज्ञ पिता में बुद्धि फंसानी है। यज्ञ पिता है ना, क्या है? ज्ञान यज्ञ का पिता माने जन्मदाता, पिता माने जन्मदाता। तो वो कहते हैं, क्या कहा? यज्ञ पिता कहते हैं, बाप आकर कहते हैं, पिता है तो बाप हुआ ना, बाप आकर कहते हैं। किसके पास आकर कहते हैं? हैं? बच्चों के पास। कहाँ से? परमधाम से आते हैं क्या? कहाँ से आकर कहते हैं? हैं? अरे कहाँ से आकर कहते हैं? बोलेंगे नहीं जल्दी। अरे आकर कहते हैं कि मददगार बनो। अरे कौन कहते हैं मददगार बनो? हाँ, वो साकार बाप है जो कहते हैं मनमना भव, मेरे मन में समा जा। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है उसको तो मन मन है ही नहीं, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? मेरे मन में समा जा कहने वाला जरूर उसने मन अपने मन को ऐसा योग्य बनाया है कि निराकारी स्टेज में निसंकल्पी स्टेज में टिका। तो तुम भी क्या करो, तो दुनियादारी के तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना अलग अलग संकल्प जो चल रहे हैं सारी दुनिया में मनुष्य मात्र के अंदर, सबके अंदर अलग अलग चल रहे हैं कि एक दूसरे से मिल रहे हैं? अलग अलग चल रहे हैं। वो सब संकल्पों को एक बाप के संकल्प में तिरोहित कर दे। एक बाप के अंदर क्या है? ज्योति बिंदु। तो क्या करो, ज्योति बिंदु में समा जाओ। इसी बात को सन्यासियों ने उल्टे अर्थ में उठा लिया। उन्होंने उठाया कि जैसे सागर में छोटे बड़े बुलबुले बुदबुदे स्पाइसेस उत्पन्न होते हैं और सागर में ही समा जाते हैं, ऐसे ही आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं। अरे जो बुदबुदे हैं सागर के बुलबुले, हम बुदबुदे हैं ना, अंदर 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 बुदबुद आते रहते हैं ना, अपने अपने संकल्प ऐसे ऐसे संकल्प चलते रहते हैं ना। तो जो अंदर अंदर बुदबुद आते रहते हैं ये बुदबुदे हो गए सागर के। तो ये सागर के जो बुदबुदे हैं उनमें गुण सागर का होगा या नहीं होगा? हैं? सागर के अंदर खारेपन का गुण सदैव है। तो बुदबुदों को इकट्ठा करो और वो पानी बन जाएंगे। उस पानी में बुदबुदों के संग्रह किए हुए पानी में खारापन होगा या नहीं होगा? तो बताओ, सागर के गुण होने चाहिए ना बुदबुदों में, लेकिन नहीं है। अरे सागर के गुण बुदबुदों में हैं, आत्माओं में हैं। अरे सागर के गुण आत्माओं में कहाँ हैं? सागर तो ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान सागर जो है वो तो इस सृष्टि पर बड़ा महान है। क्या? सारी धरणी माता को अपने गोद में लिए बैठा है। क्या कहा? धरणी में जो भी नदियां हैं, जो भी समंदर, जो भी पहाड़ हैं, जो भी पोखरे हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, वो सब जाकर के कहाँ समा जाती हैं? हैं? सागर में समा। अगर नहीं भी समा जाते हैं पर्वत आदि, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सारी सृष्टि पर सागर जलमयी कर देता है। क्या कर देता? जलमयी। वेद की जलमयी क्या है? ऐसा ज्ञान जल चारों तरफ संसार में फैलता है कि जिसमें सारी दुनिया डूब जाती है। भारत का छोटा हिस्सा बचता है। किसका? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला। कोई ऐसी चैतन्य आत्मा है जो जन्म जन्मांतर मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान की रोशनी में ही लगी रहने वाली है, ऐसी हीरो पार्टधारी आत्मा, उसके लिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में कि जब तुम सब बच्चे विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तो किसको पकड़ कर खींचता हूँ? चोटी को पकड़ कर खींचता। उसका नाम है ब्राह्मण चोटी। शास्त्रों में उसका गायन है कि जब सागर मंथन हुआ तो कौन से पहाड़ को मथानी बनाया? अरे कहाँ, दक्षिण भारत में आके बोल रहे हैं। नहीं, मंदरा अचल, मंद रहा अचल, अचल माने अडोल रहा, मंद रहा माने मंद बुद्धि है वो तो, अचल माने पहाड़ जो हिलता नहीं, मंद रहा अचल माने कैसा अचल, कैसा पहाड़, जो मंद बुद्धि रहा, बुद्धि चली ही नहीं, उसको कहेंगे हिमालय पहाड़। हिमा छादित रहती है, उसका नाम शास्त्रों में है हिमालय राज। क्या? हिमवान। धनवान नहीं, क्या वान? धनवान, वो हिमवान, बर्फ ही बर्फ वाला है वो। नहीं, वो नहीं रहता है, वो भी डूब जाता है। सारी संसार में जलमयी होती है तो वो चोटी ऊपर दिखाई पड़ती है, वो चोटी पकड़ करके सारे संसार का उद्धार करता है। कौन है चोटी? है? अरे पहाड़ की चोटी होती है कि नदियों की होती है? कौन है पहाड़, कौन उसकी चोटी है? 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 अगर ऐसी चोटी क्या बड़े से पहाड़ दुनिया का पहाड़ है हिमालय पहाड़। सभी देशों में पहाड़ तो हैं छोटे बड़े, लेकिन दुनिया के ऊंचे से ऊंचे बड़े से बड़े पहाड़ का नाम हिमालय पहाड़। उस हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट, पूर्वीय सभ्यता वाली, एवरेस्ट माने पूर्वीय सभ्यता वाली चोटी। उस ब्राह्मण चोटी को पकड़ के खींचता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, वो ही पहला फिर ब्राह्मण सो देवता बनता है। उसे एक को खींचा, बाकी तो उसके पीछे सारे अपने आप खींचे चले आएंगे कि नहीं? हैं? खींचे चले आएंगे। तो एक को ही क्यों खींचा? क्योंकि जानता है उस एक की चोटी के बालों से ये सारा खोपड़ा खींचा चला आएगा, और खोपड़े में सारी शरीर समाया हुआ है। सारा शरीर किसके आधार पर चलता है? खोपड़े के आधार पर चलता है। तो वो एक खींच लिया तो साफ खींच जाएंगे, साफ सुधर जाएंगे। नहीं तो ये दुनिया में जो कहते हैं, चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार 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 बढ़ता जा रहा है, वो भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो वो ब्राह्मण चोटी है जिसका नाम भारत पड़ा है, वो भारत का ही दूसरा नाम है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, माने जिसका घर ज्ञान जल के अंदर है। क्या? ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी है? ज्ञानी आत्मा। गीता में क्या कहा? नहीं ज्ञान श्रद्धा सम पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र कोई की है ही नहीं। तो वो पवित्र आत्मा की जाती है और किस लिए, किस पर्पज से? इसलिए की जाती है कि उस आत्मा में अगर पूरा ज्ञान आ गया सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और सृष्टि के आदि अंत आदि मध्य अंत का जो त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आत्माओं के बाप के अंदर है, क्योंकि वो जन्मन के चक्र से न्यारा है, उसी ज्ञान को अगर उस चोटी में डाल दिया तो चोटी क्या करेगी? सारे संसार में उस ज्ञान को फैला देगी। तो बताया, अरे ऊंचे ते ऊंचा भगवान, बता तो दिया ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर आगे और बोला और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आकर कहते हैं। दो अर्थक हो गया, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्योंकि उससे भी ऊंचा कोई है कि नहीं? वो है जो उसको सारा ज्ञान देता है, अगर वो ज्ञान ना दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आकर उस तन में कहते हैं, क्या कहते हैं? आकर कहते हैं। अरे आते हैं तो किससे कहते हैं? है? आकर किससे कहते हैं? बच्चों से कहते हैं। वो बच्चों से बात, बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है 500-700 करोड़ में, एक को छोड़कर मनुष्य सृष्टि के बीज को छोड़कर सबसे बड़ा बच्चा कौन है? दादा लिख रहा है। तो 84 जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं पहली पीढ़ी से सतयुग से, उनमें पहला पत्ता है या नहीं? बड़ा बच्चा है कि नहीं? उसमें आकर कहते हैं या बीज में आकर कहते हैं कि मुझे ऊंचे थे ऊंचे बाप को? आकर कहते हैं मुझे ऊंचे थे ऊंचे अपने बाप को याद करो।
अरे
अपने शब्द क्यों लगा दिया? दूसरे धर्म वालों का नहीं है? अरे अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। है
चंद्रवंशी के समय पे अपने बाप तो धर्म का बाप,
वो तो ठीक है। तो इब्राहिम भी अपने समय का बाप हो गया, बुद्ध क्राइस्ट भी अपने समय के बाप हो गए, विकल्प विनाश हुए। मुझे ऊंचे ऊंचे बाप को अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। तुम्हारा किससे कहा? दूसरे धर्म वालों से कि सूर्यवंशियों से? सूर्यवंशियों से कहा तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। लेकिन किसके द्वारा कहा? जो यज्ञ के आदि में था, तनधारी व्यक्तित्व, व्यक्ति पर्सनालिटी, उसके द्वारा कहा या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा कहा? हैं? दादा लेखराज के द्वारा कहा वो? अरे ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत आकर कहते हैं कि मुझे ऊंचे से ऊंचे अपने बाप को याद करो। ये ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे कहाँ की बात है, तो तुम्हारी विकार विनाश हो जाए। तो जो यहाँ दो बार ऊंचा बोला, ऊंचे से ऊंचा भगवंत और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, वो कहेंगे तो उधर भी इशारा है और वो कहेंगे तो भविष्य के लिए भी इशारा है। नहीं, दोनों तरफ वो माने वो भी और वो भी, लेकिन कहा किसके तन से? दादा लेखराज के तन से कहा, न कि 500 करोड़ से कहा है? या कि सूर्यवंशियों से कहा? सूर्यवंशियों से कहा, कहा बात किससे की जाती है? जो बात को समझता है उससे बात की जाती है, या जो बात को समझते ही नहीं उनसे बात की जाती है? मैं तुमसे बात करता हूँ, ये बीच में बोलता है, मैं तुमको बताता हूँ, ये बीच में बोल पड़ता है। तो मना तुमसे जो बोला है वो किससे बोला है? जिसकी जिसके ऊपर उम्मीद है उसी से बोला जाता है। चंद्रवंशियों से बोला, चंद्रवंशियों के ऊपर उम्मीद है, वो राजधानी स्थापन करने में बाप के सहयोगी बनेंगे कि विरोधी बनेंगे? अभी भी विरोधी है और 28 तक क्या बनेंगे? हम महाकाली के आधार लेकर के विरोधी ही बनते रहेंगे। तो मैं तुमसे बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है कौन? तो जब पहला पत्ता ही बीच में सुन लेता है तो बाकी जो और बच्चे हैं वो अभी किस स्टेज में हैं? सूर्य के बच्चे बने या नहीं बने? ऊंचे से ऊंचे बाप के, ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले जो धर्मराज से भी सजा न खाए, ऐसे बच्चे बने हैं? नहीं बने अभी। ऊंचे से ऊंचा भगवंत आकर कहते हैं, मुझे ऊंचे से ऊंचे बाप को, अपने बाप को याद करो तो तुम्हारा विकर्म। अपने का मतलब ही है सूर्यवंशियों का बाप, क्योंकि तुम्हारे शब्द यूज किए हैं। वो है यज्ञपिता, यज्ञपिता। वो आकर के कहते हैं मेरे मददगार बनो। कौन? ऊपर वाला कहता है मेरे मददगार बनो है? वो तो कह नहीं सकता। कौन कहता है? मदद कौन मांगता है जबकि बोल दिया मांगने से है? मांगने से मरना भला, तुम मर जाओ ना, देवान त्याग दो ना। तो बोला आकर के कहते हैं, तो कौन आकर कहते हैं बाप? आकर के कौन कहते हैं? यज्ञ पिता है, और किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, यज्ञ पिता को पहचानो। यज्ञ पिता यज्ञ के आदि का पिता है, आदि में जन्म देता है, अंत में वर्षा देता है। आदि में जन्म देने का काम कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। अब अंत में क्या करना है? राजा ही का वर्षा देना है। इसी दुनिया में देना है कि अगले जन्म में लेंगे? इसी दुनिया में राजा ही का वर्षा देगा। तो यज्ञ पिता है, उसके मददगार बनो। वो बाप ही या यज्ञ पिता ही आकर कहते हैं मेरे मददगार बनो। तो कौन है जो मदद मांग रहा है और आकर तुम्हारे सामने कहता है? वो तुम्हारे सामने नहीं कहता है, कहता है वो नहीं कहता है। कौन कहता है तुम्हारे सामने आकर? उसे क्या दरकार पड़ गई जो तुम्हारे सामने दर दर भटकता है पड़ता है आकर के? धर्म के धक्के खाना जो मशहूर है संसार में, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, सब धर्म पिताओं ने इस दुनिया में आके धर्म के धक्के खाए। तो वो तुम्हारे सामने आकर कहता है मददगार बनो। इसका मतलब एक ऐसा टाइम भी आ चुका है उसके लिए और ऐसा टाइम आगे भी आ सकता है जो आदि में सो अंत में, कि कोई उसका मददगार बनना स्वीकार नहीं करता। आदि में भी अकेला था, सारी दुनिया एक तरफ और वो बाप एक तरफ, और मध्य में भी क्षेत्र में वो एक बाप एक तरफ और सारी दुनिया बाहर की दुनिया भी और ब्राह्मणों की दुनिया भी, और तो ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मण बच्चे भी चाहे अभी एडवांस पार्टी के हों, लेकिन पहले कहाँ थे? पहले बीके में थे कि एडवांस में थे? बीके में सारे ही फ्रंट में आ गए, कोई भी सहयोगी मददगार नहीं था। और अंत में भी क्या होना है? नहीं होना है तो ऐसे क्यों बोला मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा? बोल, यहाँ जो बैठे हैं वो मधुबन वाले अपने समझते हैं कि नहीं कि हम मधुबन वाले नहीं हैं, हम तो अपने घर के हैं? समझे हैं? इसका मतलब माया ऐसा विकराल रूप धारण करने वाली है। आदि में तो छोटा रूप था और अभी तो बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। माया रावण कहते हैं। माया अकेले नहीं होती है, माया के साथ रावण भी है। रावण का मतलब 10 सिरों वाला, 10 सिर उसके साथ है। वो रावण उन 10 सिरों का सरताज है, भले गधे जैसी बुद्धि है। वो 10 सिर एक तरफ अपनी फॉलोअर्स के साथ और एक आत्मा एक तरफ यज्ञ के आदि की तरफ रह जाएगी। तो भीख मांगनी पड़ेगी नहीं आकर के बच्चों के सामने दर दर है? नहीं मांगनी पड़ेगी ना, शूटिंग हो रही है ना, तो दर दर भीख मांगने वाले को प्रजा कहेंगे या राजा कहेंगे? है भिखमंगे को क्या कहेंगे? है क्षेत्र में भी भिखमंगा था या नहीं था? है था, वो 40 वर्षों का आदि था। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष, तो 40 पूरे होने आए, तो अब क्या होने वाला है? है जो ब्राह्मणों की दुनिया का सरताज था आदि में, जिसके लिए बोला लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है, ये बुद्धि से समझने की बात है, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। बुद्धि से समझने वालों ने नंबर बार समझा या नहीं समझा कि वो लक्ष्मी नारायण कौन है? सारी दुनिया के सरताज, ऐसे सरताज जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है उनकी कभी भी इस दुनिया में हार होती नहीं। अरे हार नहीं होती क्या? 42 में हार नहीं हुई जब ओम मंडली खलास हुई थी? अरे हाँ, गायन है मन के हारे हार और मन के जीते जी। तो क्या उसका मन उसके दिल ने मान लिया क्या कि मैं हार गया? उसने नहीं माना, तो अंत मते सुगति होती, अगला जन्म लेकर वो आत्मा फिर आती है। जहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में आके जन्म लेती है वहां से ही उसको ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस मिल जाता है, पुरुषार्थ रूपी शरीर का धनुष मिल जाता है, लकीला धनुष, कितना भी पुरुषार्थ करो क्या, शरीर भल कैसा भी हो आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो लुंजुम पुंजुम शरीर से भी ऊंची से ऊंचा पुरुषार्थ कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो किया। जिसका गायन है पुरुषार्थ का शास्त्रों में, उस धनुष का शरीर का गायन है शंकर चाप जहाज, ये गायन है क्या कि वो धनुष है? कौन ऋषि थे? दधीच ऋषि की हड्डियों से बनाया गया। दधीच कौन है? ब्रह्मा बाबा। दधी दधी माने दधी जाम होती है या लिक्विड होती है? है तो किसका नाम दधीच हुआ? जैसे बर्फ जाम होती है या लिक्विड होती है? जाम होती है। ऐसे ही उनका नाम हुआ दधीच। दधीच माने जिनकी बुद्धि ज्यादा चलायमान नहीं थी, चलती नहीं थी, मन जो है उतना चलायमान नहीं था, मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं था, तो वो हुआ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की हड्डियों से, वो ऐसी हड्डियां थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र का वज्र तैयार किया गया उन हड्डियों से। वज्र बहुत कठिन होता है उसको काटना, ऐसी हड्डियों से बना हुआ जो पुरुषार्थ रूपी धनुष था, उस धनुष को कहते हैं कि राम ने क्या किया? तोड़ दिया। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया जो दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ शरीर से, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके पार चला गया। उसी धनुष का ये गायन है कि उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण ने भी हिला नहीं पाया क्या? और सीता ने क्या किया? सीता ने जब घर की सफाई की तो बाएं हाथ में उस धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से सारे घर की सफाई कर। तो देखो ये बात कहां लगती है, ये अभी की बात है। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को कोई भी ब्रह्मा कुमारी उठा नहीं सकती जीवन में। क्या? उसको उठा करके पार लगाए संसार सागर से कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं, सिर्फ सीता का गायन। सीता के दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक जड़ देह का रूप। तो वो है प्रकृति, जिसको गीता में दो रूप बताए हैं, एक परा प्रकृति, पार पाया जाए जिसका। तो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका मनुष्यों ने पार पाया कि नहीं पाया? है? पार पाया या नहीं पाया? पाया। और एक है अपरा प्रकृति, जिसका पार किसी ने नहीं पाया। लोग ये भी आज कहते हैं कि भगवान का पार पाया जा सकता है, लेकिन भगवान की जो रचना है प्रकृति उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं, एक चैतन्य एक जड़। तो जो चैतन्य है वो है पार्वती के रूप में, और जो जड़ है वो है शरीर जगदम्बा का रूप। ये दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बनती है। तो बताया कि इन दोनों में ये शक्ति है क्या कि शरीर रूपी जो चाप है धनुष है उसको हाथ में आराम से उठा लिया, लेकिन रावण के 10 सिर उस धनुष को उठाए हिला ही नहीं सके। हिलाना माने तो है ही अचलगढ़ का पार्ट। किसका पार्ट? माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ का मतलब क्या है? कैसा गढ़, कैसा किला, जिस किले को कोई भी हिला ही नहीं सका। नहीं तो क्या होते हैं, बाहर से दुश्मन आते हैं, किले की दीवारों को तोपे मार मार के ढा देते हैं, कला बैठ जाता है या तो दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन ये कैसा अचलगढ़ है, चलायमान है ही नहीं, हिल ही नहीं सकता। 10 जो सिर हैं रावण के, वो उस किले को तोड़ नहीं सकते हैं। तो उस संगठन के पिता का नाम क्या रखा, रुद्र ज्ञान यज्ञ का पिता, यज्ञ पिता। वो कहते हैं कि मेरे मददगार बनो। ये क्या बात है, ज्ञान यज्ञ का पिता, ज्ञान यज्ञ की सर्वोच्च सर्वोपरि शक्ति, वो मांगती है मददगार बनो। तो कर्म अच्छे किए होंगे या खराब कर्म किए होंगे, हैं? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। खराब कर्म किए हैं और सबसे जाति खराब कर्म किए हैं राजा बन करके, क्योंकि राजा जब अहंकार में आते हैं तो कुछ भी करते हैं कि नहीं है। टीपू सुल्तान वालों क्या करता था, मैसूर वालों से पूछो क्या करता था जघन्य काम, अरे बता दो ना क्या करता था है? अरे एक चोटी थी टीपू चोटी कही जाती है, क्या क्या कही जाती, टीपू सुल्तान की चोटी पहाड़ की, वहां से धक्का मारता था और नीचे उसकी हड्डियां हड्डियां चोटी पत्थरों से टकराते टकरा ऐसे 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 दंड देता था। वास्तव में किसी की जान लेना ये किसी का हक नहीं है। क्या तुलसीदास ने लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में ये नहीं है कि वो उसकी जान ले ले, मौत दे दे। लेकिन राजाओं ने क्या किया, मौत के घाट ढेरों को सैकड़ों को उतारा या नहीं उतारा, और उन पाप कर्म करने वालों में सबसे जघन्य हत्यारा, हत्या का पाप कर्म करने वाले होते हैं, चाहे वो अपनी हत्या करें चाहे वो दूसरों की हत्या करें, ये जघन्य पाप करने वालों में सबसे बड़ा पापी कौन हुआ, अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर ये संस्कार कहां से आए, अरे कौन से युग से आए, संगम युग से आए। संगम युग में उसने जितना मौत के घाट उतारने का धंधा किया है उतना दुनिया में कोई ने नहीं किया। कौन कौन गाया हुआ है, शंकर गाया हुआ। तो बोला यज्ञ पिता को आकर कहना पड़ता है मददगार बनो, यानी ऐसा समय आने वाला है जो इशारा दे दिया था ब्रह्म वाक्य मुरली में, अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, माने जो सरेंडर्ड हैं भगवान के बनाए हुए किले के अंदर आकर बैठ गए वो रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। उन बाहर वालों के सामने आकर के यज्ञ पिता को भीख मांगनी पड़ेगी अपने पिछले जन्मों का पाप खत्म करने के लिए। क्या पाप, क्या पाप, कि जो बड़े सहयोगी थे उन्हीं के ऊपर गुस्सा आई और मौत के घाट उतारा। राजा ऐसा दुष्कर्म करते थे कि नहीं है, अरे इतने वफादार आज्ञाकारी मददगार ईमानदार, ऐसे ऐसे सहयोगी बच्चों को थोड़ी सी गलती हो गई और उनको गुस्सा आई और उन्होंने सूली बचा दिया, ये अच्छी बात है, हैं? ये तो बड़ी खराब बात हो गई। तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध जिसने किए हैं उसको क्या दंड मिलना चाहिए, बोलो ना, उन लोगों के दर दर जाकर के भीख मांगो, क्या करो? अरे 76 में भीख मांगी थी नहीं, ऑल इंडिया में जा जाकर के नहीं मांगी थी? मांगी थी, भीख मांगने पर भी नहीं मिली। क्या ऐसा भी होता है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। क्या उसका जीवन ही ऐसा होना चाहिए? अंतिम जन्म का जीवन उसे प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या कि सैकड़ों जगह अप्लाई करे, नौकरी मिल जाए और कहीं से भी जवाब ना आए, फिर बीसियों पचासियों जगह जा करके साक्षात्कार दे और कोई भी उसे भीख न दे, स्थान न दे, तो क्या कहें? और बिना मांगे मिल गया, बुलाने वाले ने अपने आप ही बुला लिया। और जिस साल बुला लिया तो उस साल से उठते 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 भगवान के घर तक पहुंच गया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, क्या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, और वहां से भी धक्का मिला। वहां पहुंचकर क्या किया? ब्रह्मा कुमारियों को साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? कि इन्हीं का ज्ञान सच्चा है और दुनिया में जितने भी पंडित विद्वान आचार्य हैं उनका साफ सबका ज्ञान झूठ है, और फेल कर दिया गया। इनको सच्चा घोषित किया, वहां से भी धोखा। ये हैं धर्म के धक्के, तो ये पूर्व जन्मों का हिसाब नहीं कहें तो क्या कहें? हैं? ऐसा ऐसा जहां जहां से धक्का खाता है, भीख मांगता है, तो दुख मिलेगा, वो दुख दिया होगा या बिना दुख दिए ऐसा हो गया है। पूर्व जन्म में पता नहीं कितनों को कितना दुख दिया होगा। तो बोला, वो बाप आकर कहते हैं मददगार बनो। क्या कहते हैं? एक तो मददगार इस बात का बनो कि जो पाप कर्म हमने कर दिया वो पाप कर्म कोई किसी जन्म में न करे। क्या बोला? एक तो कोई को दुख नहीं दो। क्या है सबसे बड़ा काम? क्या करो है? एक तो कोई को दुख न दो, ऐसा कोई कर्म न करो, ऐसी कोई वाचा न बोलो, ऐसी कोई आंख न दिखाओ लाल लाल जो दूसरे को दुख हो जाए। कर्मेंद्रियों से कर्म न करो। और दूसरा, जो भी तुम्हारे में अभी जो सारा भर गया तुम्हारा मीटर, क्या तुम्हारी बुद्धि का जो मीटर है ना, वो पाप कर्म करते करते विकर्म भर्ती करते करते इतना भर गया है कि उस कीचड़ को साफ करना याद कर करके, याद कर करके घटता जाए। दूसरों को कहता है, है? क्या कहता है? दूसरों को कहता है ना, याद कर करके घटता जाए, घटता जाए। कितना घटता है ये बड़ी जांच की बात रहती है, सोच की बात है कि कितना वो पाप कर्मों का मीटर जो कीचड़ भर गया है बुद्धि रूपी मीटर में वो साफ हो जाए। समझे ना? ये फिक्रात बड़ी जबरदस्त बाबा ने हमको दे दी। क्या वो मीटर बहुत भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ है, या खाली है। समझा ना कि हम कहाँ तक बाबा को याद कर रहे हैं? नहीं याद कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं याद कर सकते हैं तो हमारी क्या गति होगी? अगर याद नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो ये बात घड़ी घड़ी अपने से पूछनी होती है बच्चे। ओम शांति।